वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महाबदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरक्षिते हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानुसुते प्रणमामि हरि हा देविका सुभर गदगदयाद्यवाच जाचेनि पत्तभूमि दण्डवत उद्भटारति अस्य प्रसादमबुदस्य जनस्य गन्धर्विके तव गणे गणनां दिधे अङ्गश्यामलिं सताभिरभितो मन्दितुतेन्दीवरं जड्डं जागुतरोति सांहिदतं पट्टं वरस्य क्रिया वृन्दारण्यनिवासिनं हृदिलसद्दामाभिरामोदरं राधास्कन्दनिवेशितो जलभुजं ध्यायेन्दाम् भक्त्या विहीनापराधलक्ष्यै क्षिप्राश्रुकामादितरङ्गमध्यै कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणा गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो वैराग्यजुगभक्तिरसं प्रयत्नै अपायन्माननुसुमन्दं कृपाम्बुधिर्यपरदुःखदुःखी सनातनस्तं प्रभुमाश्रितं श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सपदं कृपां यं प्रव्रजन्तमनुते समपेतपुष्यम् दौतायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोभिनेहि तं सर्वभूतहृदयं मुनिवासितु तवैवास्मि तवैवास्मि न जिमामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं न मां सन्दिशतु लोगों ने गोपिका भी उदितो हरिदास वर्य यही था संताय मद्र हरिदास वर्य जदराम कृष्ण चरण पर सह प्रमोद मानं तनोति सह गो गण योर्ज तयोर्ज पानी सूर्य सकंदर इसमें हरिदास के संबंध में हम लोगों ने वर्णन किया था। उसमें हमने तारतम्य दिखलाया ये गुरुदासों में भी बहुत सी श्रेणियां है और यही प्रारंभिक श्रेणी है भजन राजी के लिए। इस प्रारंभिक श्रेणी में भी बहुत से सोपान हैं। सब गुरुदास समान नहीं है किसी भी रूप में, चाहे तात्विक रूप में, सेवा के रूप में, भावना के रूप में, बहुत तात्म मिलने। और इसी विचार को हम लोग दिखाने के लिए कर्मशः कर्ण की गुरु भक्ति भीष्म जी की, भीष्म पितामह की, और उसके बाद में अरुणी और इसको भी हमने त्रिगुण के अंतर्गत में दिखलाया, त्रैगुण्य मई ये सब। ये भी भक्ति से इसका कोई संबंध नहीं। इसका स्वर्ग इत्यादि से ही संबंध है उस भक्ति का। उसके बाद में हमने सुदामा जी का दिखलाया, ये निर्गुणा भक्ति है जिससे उनको नारायण के प्रति भक्ति मिली, माने कृष्ण माने द्वारकाधीश उनके प्रति उनकी भक्ति मिली। जो धन धान्य इत्यादि तो मिला ही, किंतु उसमें विराग भी मिला और कृष्ण में विशेष अनुराग द्वारकाधीश के प्रति हुआ। यहां से निर्गुणा भक्ति आरंभ हुई। निर्गुण ये गुरुदास थे इसलिए उनको मिला। इसके बाद में हमने दिखलाया बिंदु मंगल का दिखलाया। उसके बाद में हमने रूप सनातन जी का दिखलाया और अंत में गोविंद जी की महा के प्रभु के प्रति कैसी निर्मल स्वच्छ प्रीतिमयी भक्ति देखा, जो कि स्वरूप दामोदर के लिए भी कहते हैं कि ये आते हैं और महाप्रभु को रुलाते हैं और फिर महाप्रभु जी हमको कहते हैं कि उन दोनों को बुला लाओ रोने के लिए। ये मेरी समझ में नहीं आता। ये गोविंद जी को भी कम मत जानना, शास्त्रों में निपुणता, वांग्मय, वक्ता होने का भाव, यद्यपि इनमें कुछ नहीं दिखता, न कि कीर्तन में राग रागिनी स्वरालाप ये भी कुछ नहीं दिखता, किंतु उनके हृदय में महाप्रभु की सेवा की वासना और भावना कैसी है इस पर विचार करो। सब रूप में स्वच्छंद रूप में महाप्रभु जी की सेवा का आदर्श भी कैसे करते हैं वो भी दिखलाया हमें। ऐसे सेवक के प्रति सार्वभौम भट्टाचार्य को भी कुछ संदेह हो गया था कुछ। उन्होंने कहा महाप्रभु जी से, इस शूद्र शिष्य को आपने क्यों ग्रहण किया, लोग क्या कहेंगे, और उसमें कुछ भक्ति का भाव उनमें हो गया था तो भी इन्होंने पूछा। उन्होंने कहा कि हमारे ईश्वर की ऐसी ही, ईश्वर का हमारे प्रति ऐसा ही आदेश। उनके ईश्वर कौन है, ईश्वर वो सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं हमारे गुरु, उनके ऊपर में वेद की वाणी का और शास्त्रों की आदेश का कोई भी अंकुश नहीं है, कोई अंकुश, वो प्रभु हमारे स्वतंत्र हैं और उन्होंने मुझे आदेश दिया उनको ग्रहण करने के लिए, हमने और कुछ विचार नहीं किया, बस यही कि हमारे गुरु जी ने कहा बस उसको। गुरु सेवक है मान्य अपना, गुरु का सेवक जो होता है वो मान्य किसके लिए, यदि मान लिया कि कोई कनिष्ठ है गुरु जी की सेवा कर रहा है और जो प्रवीण है और वो अब गुरु जी की और सेवा कर रहे हैं, तो प्रवीण वाले इसको सेवक को मानेंगे कि नहीं मानेंगे। गुरु सेवक है मान्य अपना, उनको मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए, आखिर केवल कनिष्ठ वाला जो पीछे आया है गुरु जी की सेवा भी कर रहा है तो भी वो नहीं मानेंगे, जो प्रवीण है वो भी मानेंगे और जो नवीन है वो भी मानेंगे, दोनों मानेंगे। गुरु गुरु सेवक को देख करके यही भाव रहे, ये नहीं कि मैं बड़ा हूं तो उसका भी मैं सेव्य हूं और उस पर सब प्रकार से ऐसा नहीं। यदि भगवान का भजन करने की इच्छा है, गुरुदेव को यदि प्रसन्न करने की इच्छा है, तो ये देखो कि गुरु जी की सेवा कौन कर रहा है वो हमारे लिए मान्य है। यदि कुत्ता भी हमारे गुरु जी की सेवा करता है तो हमारे लिए मान्य है, ऐसे भावना रखो। कहीं कहीं ऐसा देखा जाता है कि जिसने सारा जीवन सेवा किया गुरु जी की, वैष्णव की, संतों की, भले ही उसमें कर्म कुशलता नहीं है, जो कुछ है सब लगाया, आप थोड़ा सा कोई कर्म में कुशल हो गया तो सबकी अवज्ञा करता है उन सेवकों की, तो भ्रष्ट हो जाता है परमात्मा से। इसलिए उधर में अधिक जोर नहीं देना चाहिए, कर्म कुशलता और ये सब देना चाहिए। गुरु के प्रति किसकी भावना कर, यदि एक दिन किसी ने हमारे गुरु जी की सेवा कर दी तो मैं उसका ऋणी रहूंगा। गुरु सेवक कौन है? प्रभुपाद जी ने कहा है, कहीं आपने भी जरूर देखा होगा, वैष्णव का जो सेवक है वही गुरु सेवक है। वैष्णव मात्र का सेवक नहीं होने से गुरु सेवक नहीं हो सकता, उसकी उपलब्धि नहीं कि गुरु क्या चीज है। भक्तों को छोड़कर के भगवान अलग से हैं या गुरु सेवकों को छोड़कर के गुरु अलग से हैं? वैष्णव को वैष्णव में सबसे प्रधान गुरु है। इसलिए जितने गुरु सेवक हैं वो वैष्णव सेवक अवश्य होंगे। इसीलिए हमने कहा था कि पहले गुरु सेवक और इसके बाद में वो वैष्णव है, वैष्णव सेवक। जहां देखो प्रभुपाद जी का, हमारे गुरु जी को वो देखा है, सब वैष्णव को देखा है, वैष्णव दासानुदास हम चिट्ठी जब लिखते हैं ना क्या लिखते हैं?
वैष्णव
गुरु दासानुदास लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं?
वैष्णव
क्यों लिखते हैं? यदि यही होता कि गुरु दास ही एकमात्र है तो वैष्णव दासानुदास ये सचराचर जो यही चलता है, ये क्यों है? जो वैष्णव दास नहीं है वो गुरु दास नहीं है, साथ ही साथ वैष्णव को सम्मान नहीं देगा, कृष्ण भक्तों को सम्मान नहीं देगा और वो गुरुदास हो जाएगा। गुरु जी की लाख सेवा करने पर भी गुरु जी उसकी सेवा ही नहीं ग्रहण कर। इसलिए अग्रह है मुक्ति तबे सर्वबंधना तबे से होते पारे श्री कृष्ण रदास। मुक्ति नहीं होगी, मुक्ति माने क्या? अनर्थना, संसारिक आसक्ति, ये सब दूर ही नहीं हुआ और गुरु का दास जाए, गुरु का दास इतना सहज नहीं है, बहुत बड़ी भारी बात है। इसलिए हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने अपने कुसुमांजलि में सबसे पहले किसको प्रणाम किया? जदुनंदन दास को किया ना पहले, नहीं किया? जो दुनंदन दास को किया चौथे या पांचवे, पांचवे श्लोक में, पांचवे श्लोक में सबसे पहले रूप गोस्वामी जी की वंदना की। और वो वंदना वंदना के रूप में नहीं बल्कि इस रूप में किया, हमने कल बतलाया था इसको, सिरूप मंजरी पथिता पुरेश पुंसह परस बदनम नहीं पसे बिंबाधरे खत्म अनागत भत्तिकाया यत्ते बधाई की मुसुक्त पंगर। जब तक कोई गुरुदास नहीं होगा वो इस चीज को नहीं समझेगा, इस भावना को, बहुत ही उच्च भावना है, इसी को कहते हैं रूपानुगत। रागानुगत तो से भी ये बहुत श्रेष्ठ है रूपानुगत। इसलिए हमारे महाप्रभु जी के अनुगामी जो वैष्णव हैं, रूपांग कहने में ही अपना सबसे अधिक महत्व तो समझते हैं, महिमा, इससे बढ़कर तो और कुछ नहीं। रूपांग गुरु वर्ग की जय, सब जय देने के बाद भी ये जरूर लगा रहेगा, यही हम लोगों का वैशिष्ट। क्यों? अभी हम लोग नहीं समझ रहे हैं, भगवान करे जो वो दिन आए तो हम लोग इसको समझ सकें। इसलिए इस श्लोक में इन्होंने प्रणाम किया रूप गोस्वामी को, दीक्षा गुरु को उल्लंघन करके इनको क्यों प्रणाम किया? दीक्षा ग्रहण को गुरु को उल्लंघन करने की इनकी नियत थी? उनको भावावेश में ये सब कुछ, वो तो परराज्य की बातें कर रहे हैं, वहां पर ये सब कैटेगरी गुरु दीक्षा गुरु इत्यादि साधन जन्य विधियां वहां पर नहीं है, वहां पर देख करके मुस्कुरा दिया, उसने देख करके मुस्कुरा दिया, यही प्रणाम का हजार गुना हो गया, लाख गुना बाबा हो गया। बस ये श्लोक आकर के थोड़ा सा मुस्कुरा दिया होगा, और हमारे रूप मंजरी ने भी इनकी तरफ में देख करके मुस्कुरा दिया होगा। क्यों? उसके बाद ही कहते हैं श्री रूप मंजरी कराक्षित पाद पद्म गोपेन्द्र नंदन भुजार्थी समस्तिकाया हा मुदतः कनक गौरी पदार विंद संवाहनानि सनकै। राधा कृष्ण विलास से क्लांत हो गए हैं, राधा जी कृष्ण की गोदी में अपना सिर रख कर विश्राम कर रही हैं। कृष्ण अपने गोदी में उनका सिर लिए हुए उनके केशों को संभाल रहे हैं, अंगुली से जो उसमें परस्पर लग गए हैं उनको हटा रहे हैं, और धीरे धीरे मस्तक पर हाथ फेर रहे हैं। तिरुप मंजरी कराक्षित पाद पद्म, और अपने पैरों को कहा लंबा थोड़ा सा कर दिया है, वो रूप मंजरी जी के गोदी में है। किसका पैर?
श्रीमती
राधिका जी का, और उसको धीरे धीरे वो संतर्पण कर रही है, संभाल रही है, धीरे धीरे पैर के तलवे को देख रही है, उठा लिया कभी सिर पर रख लिया, कभी अपने हृदय में रख लिया, कहां रखें क्या करें उनको पता नहीं। रूप मंजरी कराचित पाद पद्म गोस्तेंद्र नंदन भुजार्पित मस्तिकाया, जिसके मस्तक पर कृष्ण ने अपने अपूर्व सुगंधित भुजाओं को अर्पण कर रखा है, और उनके केशों को संभाल रहे हैं। कौरी पदारण इंद हाँ मूदत कनक गौरी पदार बिंद मनस पर्ण की पुतली है वो, और उस मंजरी हमारे तरफ में इशारा करेगी, क्या इशारा? आ जाइयो, मैं थोड़ा पंखा झल लेती हूँ, तुम इस पैरों को संभालो, और अपनी जगह में हमको बैठा देंगी, और अपनी कृपा से अभी सिक्त कर देंगी, वो हमारा कैसा सौभाग्य। इसको कहते हैं अनुगत्य पादाब्जयो तव विनाश वरदास्यमेव नन्यत् कदापि समये किल देव जाति सखायते मम नमस्तु नमस्तु नित्यं तत्चायते मम रसोस्तु रसोस्तु। मैं हे श्रीमती राधिके, मैं सखी पद नहीं चाहती, वो हमारे सिर पर और रखने की चीज है, हमारे अर्चन और पूजन की वस्तु है, वो हमारे लिए सब समय नमस्कार की। मुझे क्या चाहिए? बस आपकी दासी ही की, दासी का दासी का दासी, इसके अतिरिक्त हमें और कुछ नहीं। स्वयं कृष्ण भी यदि आपके समान सखित्व पद देना चाहते हैं, मुझे एकदम जरूर। इसलिए दासी पद का, दासी का जो दासी पद है, बस यही मेरे लिए सर्वस्व। इसको कहते हैं रूपानुगत भाव, सखित भाव नहीं। ललिता की शाखा तक भी सखी होने पर भी यही पद चाहती है, रूपमंजरी जैसा। रूपमंजरी जी का भाव कैसा? क्या वो पयोदान अभिसार आदि भी तांबुलार्पण पयोदान अभिसार आदि भी बृंदारण्य महेश्वरी सक्तिम जस्तो श्यंतिया प्राण प्रेस सखी कुलात अपि प्राण प्रेस सखी कुलात अपि असंकोचिता त्रिरूप मंजरी मुखा सत्ता। जो प्राण प्रेस प्रिय नर्म सखियां हैं, उनसे भी कोई अधिक महत्व को प्राप्त हुई ये जो दासिकाएं हैं, असंकोच वृत्ति से राधा और कृष्ण दोनों के जुगल की सेवा करने वाली हैं,
और राधा जी की विशेष रूप से सेवा करने लगी इन गोपियों की चरण धूलि में हो जाऊं हमारा जीवन का ये रूपानुगत स्वभाव। ये यदि कोई देने वाला है कोई गुरु, इस गुरु से बढ़कर के और विश्व ब्रह्मांड में और कोई नहीं सकता, यही सर्वोत्तम। इस रूप गोस्वामी के जाने के बाद में जीवात्म रहस्य ये श्लोक बतलाया एकदम हो गए। अब जीवन रखने की कोई जरूरत नहीं, महाप्रभु जाने के बाद भी अपना जीवन रखा किसी प्रकार से चले आएगी, स्वर्ग दामोदर जाने पर भी अपना जीवन धारण किया चले आए वहां से, जीवन का कोई सहारा नहीं रह गया। जब वृंदावन में आए तो रूप सनातन दोनों भाइयों के प्रेम से सिक्त होकर के पुनर्जीवित हुई और उस करके कैसा भजन किया रूपानुगत स्वभाव से। ये भजन संसार में इससे बड़ी कोई निधि नहीं है, इसलिए प्रभुपाद ने भी कहा रूप मंजरी की चरण की धूलि होना ही क्या है सबसे सबो मैंने सर्वोत्तम आकांक्षा की सर्वोत्तम आकांक्षा का विषय हमारे संप्रदाय का विशेष करके प्रभुपाद जी के गणों में यह सबसे बड़ी बात। किंतु ऐसा होना बड़ा भारी कठिन है भाई, बहुत कठिन। अब इसके बाद में तब कृष्ण दासत्व आएगा और कृष्ण दासत्व पहले हुआ गुरुदास, इसके बाद में वैष्णव दास, इसके बाद आया नारायण इत्यादि का दास, इसके बाद में कृष्ण दास आया, उससे भी ऊपर गया राधा दास। हम लोगों के लिए रूप मंजरी इत्यादि का ऐसे भाव संपन्न जो हमारे गुरु वर्ग हैं, गुरु हैं, उनके चरण कमलों की धूलि हम लोगों के लिए सर्वोत्तम काम है। इसलिए हरिदास वर्ज्य हरिदास वर्ज्य बसला है, हरिदासों में भी हरिदास में सबसे बड़ा शिष्य कौन है, बृहद सर्वोत्तमुख में क्रमशः दिखला रहे हैं उद्धव कप ले गए हैं प्रेमासुत्तर और इसके बाद में बंद कर दिया, वर्ज्य का कोई वर्णन नहीं किया। प्रेमासु तक ये लोग माने भक्त माने अभी साधक या पैसा चल रहे हैं, ब्रज के वो लोग सब साधक साधक नहीं है, उसका साधन ही नहीं है, अभी इसी में हम लोग चले चल रहे हैं। ओ ये तो अध्याय समाप्त हो गया है, ये अध्याय समाप्त हो गया है, अगले अध्याय में हम लोग चल रहे संक्षेप उसका हम लोग वर्णन करके आगे चलेंगे, तो उसमें इसी भाव की पुष्टि होती है। ये बतलाया कि भजन साधारण की जिंदगी कात्यायनी महामाये महाजोगिन नभेश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुंते नमः इति मंत्रम जपं च सा पूजां चक्रु कुमारिका एवं माखन व्रतम चेरु कुमार्य कृष्ण चेतस भद्रकालीन समानुचि गुर्जात नंद सुतपति। कल हमने बतलाया ये कात्यायनी योग माया है, कृष्ण की प्राप्ति के लिए योग माया ये पूजा अर्चन कर दैविक रूप में कृष्ण का उन्होंने भजन इसलिए नहीं किया कि कृष्ण के प्रति कुछ ऐश्वर्य की वृद्धि हो जाए, इसलिए दूसरे की कृपा से ही कृष्ण मिले हैं, यह नरलीलावत भाव ठीक रहे इसलिए। नहीं तो कृष्ण तो सबकी कामना वही पूरा करने वाले हैं, योग माया भी उन्हीं की ही है और दूसरी कुछ कहे नहीं, किंतु यदि कृष्ण आकर के स्वयं सामने और उनके इस यज्ञ को कराएं और उनकी मनोकामना को वो पूर्ण करते हैं, तो उनके प्रति होगा अरे ये तो हमारे फल देने वाले ये स्वयं भगवान है। तो नीला न लीलावत वो जो बुद्धि है वो दूर हो जाएगी। और जिस भावना के लिए आई है जो पति में ये कृष्ण को लौकिक पति के अनुसार में करें नर लीलावत भाव नहीं दिया, इसलिए वृंदा देवी ने अथवा योग माया ने ये भाव नहीं आने दिया। बीच में आकर के परामर्श दिया जो वृंदावन की अधीश्वरी ये योग माया थी वो महामाया है। महामाया माने विराट रूप में इनका शक्ति है, अघटन घटन पटियती है, इसलिए तुम लोग इन्हीं की पूजा करो और कृष्ण तुम्हारे पति होंगे उनके कृपा से, इसलिए उनकी पूजा करना। कैसा पूजा किया उसमें वर्णन किया है। सवेरे भोर में उठी जाती, भोर में मैंने इतना पहले ब्राह्म मुहूर्त से भी पहले उठी, अरुणोदय से दो मुहूर्त में जाती प्रतिदिन समय से उठती। अच्छा उम्र कितनी है, थोड़ी सी उम्र, 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष क्या पता है। ये 4-5 वर्ष की लड़कियां कृष्ण हमारे पति हो इतनी बड़ी कंठा लेकर प्रतिदिन ही बिना किसी के उठाए, माता पिता भी नहीं उठाते, कोई भी नहीं उठाते, मानो निद्रा देवी स्वयं कहती हैं यदि मैं इनको न उठा दूं तो हमारे इनके चरणों में अपराध हो जाएगा। और उनका वह प्रेम उनको उठा देता था। कौन प्रेम? वो जो उत्कंठा बनी है जो कृष्ण हमारे पति वो उठा देता, किसी को उठाना नहीं। ऐसा तो हम लोगों को भी अनुभूति हम लोगों की भी, यदि प्रबल रूप में इच्छा हो ये कृष्ण का हम भजन करेंगे, प्रबल रूप में हो उत्कंठा हो ये कृष्ण का हम जरूर भजन करेंगे, अपने आप निज समय से खुल जाएगी, आलस्य प्रमाद कुछ भी नहीं रह जाए। वैष्णव अपराध गुरु अपराध शास्त्र अवज्ञा तुलसी शास्त्र निंदन कुछ भी नहीं रहे, भोग पहुंच करके न जाने कहां चला जाए। क्यों होता है ऐसी भावना भी नहीं आती, ऐसी भावना भी कैसे आती है? बिना कृष्ण की करुणा के ऐसा नहीं होगा। वक्त कुमार का जितना भी शासन हुआ उसके मूल में किनकी कृपा है? प्रारंभ से ही गोवर्धन ने जन्म कौन दे दिया? उनका कर्म ने दिया, उनके कर्मों ने दिया। एक ऐसे जयंत जी जैसे गुरु से भेज हो गई, उनके कर्मों से भेज हुई, नाम की इच्छा से हुआ, स्वयं भगवान कृपा उन पर किए। स्वयं भगवान ही नहीं, राधा जी ने कहा उनसे अरे आप जाइए गुरु के रूप में होकर के और उसको सहायता कीजिए। उस समय में समस्त आप विपत्ति जो कुछ है सब दूर हो जाते। यदि ऐसी तीव्र उत्कंठा किसी को भगवत भजन में हो, मान ले कि ऐसी जो तीव्र उत्कंठा उन गोपियों छोटी सी बालाएं, छोटी सी बालाएं धर्म अधर्म कुछ नहीं जानती, नंगी रह करके स्नान करना होता है या कपड़े पहन करके, ये कुछ नहीं जानती, मन तंत्र कुछ भी नहीं जानती, बस ये जानती है कृष्ण बड़े प्यारे बड़े सुंदर बड़े मनमोहन हैं, ये हमारे पति हो गए। ये भी नहीं जानती है कि पति किसको कहते हैं, पति क्या होता है, ये भी नहीं जानती, बस कृष्ण हमारे पति हो लोक मुख से सुनता था बस। अच्छा ये एक दो जन्मों का ये फल है, कितने जन्मों का फल है ये, इतनी प्रगाढ़ भावना उनके अंदर में हो गई। यदि ऐसा कोई है या कोई ऐसी है सर्वस्व छोड़ करके, माता पिता का स्नेह छोड़ करके, चाहे लड़का हो या लड़की, माता पिता का स्नेह, विवाह होने पर भी विवाहित स्त्री का भी स्नेह, छोटे छोटे बच्चों का स्नेह, सबका दुलार, धन ऐसा जलात मारकर कुछ भी यदि नहीं जानता है या नहीं जानती है, प्रज में कहीं आकर के कृष्ण की सेवा करने की ऐसी तीव्र उत्कंठा हो, हम तो कहते हैं कि हम उनकी चरण की दूरी को कोटि कोटि बार वो सवेरे प्रणाम करते हैं। ऐसा यदि कोई भले ही शास्त्र जानने वाला हो, सनत नंदन भी हो, शास्त्र जानने वाले व्याख्या भी खूब कर सकते, स्मरण शक्ति भी खूब है, सदाचार भी उनमें खूब है, सब कुछ है, किंतु जरूरी या ऐसा भाव होगा ही, प्रबल ऐसी उत्कंठा होगी कोई जरूरी है, कोई जरूरी नहीं। वृक्ष की एक छोटी छोटी कुमारियां तो पूजा करने के लिए जा रही हैं, और कृष्ण मानो कि ये पेड़ के ऊपर उनके कपड़े लेकर के चढ़ गए हों, और उधर से दुर्वासा ऋषि अर्थात सनत नंदन सनत कुमार जैसे लोग जा रहे हैं, बड़े बड़े कर्दाचार्य ब्राह्मण इत्यादि वेद शास्त्र को जानने वाले आचरण प्रिय लोग जा रहे हैं, और यदि वहां पर उनकी नजर पड़ गई और देखा, अरे ये छोटी छोटी बच्चियां नंगी डोल करके ये स्नान कर रही, ये आवारा एक लड़का पेड़ की टाल पर बैठा हुआ है, इनसे सब कपड़े लेकर के टांग करके और उनसे दिलगी मस्तखरी कर रहा है, और ये भी गंवारू और विचित्र लड़कियां, इनको लज्जा न हया न शर्म, और उससे बातचीत कर रहे, यही तो धारणा लेंगे ना, क्या लेंगे। समस्त शास्त्रों के जानने वाले भी उनके हृदय को पढ़ सकेंगे, उसके अंदर में कृष्ण के प्रति कितनी निष्ठा है, और उस निष्ठा को वो दिखलाना चाहेंगे किसी को। इसलिए कृष्ण भक्तों के हृदय की भावना को जानना देवताओं के लिए भी बड़ा भारी दुष्कर है, हम साधारण जैसे लोगों के लिए तो क्या है। इसलिए ब्रज में यहाँ रहने वाले कोई स्त्री या पुरुष या कोई भी हो, यहाँ तक गुलमलता हो, जब किंचित तृण गुलमति कटमुखम गोस्ते समस्त सर्वानंद मुकुंद दैतम लीला अनुकूलम परम शास्त्रे रे मुहुर मुहुर निशंकितम जानत्या ब्रह्मा देव सत्यम ततो सर्वम मया इदम। प्रणाम करो भाई सब, कहीं भी कहीं ये बुद्धि ना जाइए, ये बेकार के पढ़े लिखे नहीं है, बेवकूफ है, आ गए कुछ जानते नहीं, आ गए हैं, पढ़े लिखे तो हैं, इसलिए ऐसा मत। जिनको ये आ गया है उनको संस्कृत व्याकरण और काव्य अलंकार शास्त्र वेद परिषद पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, है जरूरत ऐसे लोगों को, इन गोपियों को अब वेद पढ़ने की या और कोई शास्त्र पढ़ने की अब जरूरत है? वो तो जो जिसको जानने के लिए है वो कृष्ण स्वयं उनके पास में आए। इसलिए भाई कोई कोई लोग यहाँ पर व्याख्या करते हैं आध्यात्मिक पक्ष, क्या आध्यात्मिक व्याख्या, यहाँ पर गोपियों का जो चीर हरण हुआ, हम केवल शिक्षाओं के ऊपर में चल रहे हैं, जो इसमें से शिक्षा ले, प्रसंग तो देखने से बड़ा खराब सा लगता है, किंतु प्रसंग खराब नहीं, ये भागवत का एक रत्न है, ये जब भागवत से निकाल दिया जाए तो भागवत भागवत ही नहीं रहेगा, पूर्वराधि समाप्त हो जाएगा, ऐसी ये निधि है, जिसमें और योगेश्वरों को भी, साधारण योगेश्वर और बड़े बड़े विद्वानों को भी अधिकार नहीं है प्रवेश करने। कोई कोई इसकी व्याख्या करते हैं जो वो वस्त्र उठा करके जो ले गए, वो क्या ले गए, माया उठा ले गए, जो उन गोपियों में माया थी उस माया को हटा दिया। अब वो माया शून्य हो गई ना, अब कृष्ण को ग्रहण करना। अरे मूर्खों, अध्यात्मवादियों, अध्यात्मवाद भक्ति का विरोधी है, सब समय समझ। आजकल एक हिड़क चली है, जो आता है ना तो भागवत और रामायण इत्यादि को अध्यात्मवाद से उसको आच्छादित कर देता है। अध्यात्म दीपक मैंने अध्यात्म को लिए ये दीपक है, ये नहीं 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 उसका प्रकाशक नहीं, उसको भी वो अंधा है। अध्यात्म ये प्रदीप के समान है, इसको रास्ता दिखलाने वाले हैं, ये उसका अर्थ है, देख लेना। इतना चक्रवर्ती ठाकुर अध्यात्म जो है, अरे महाभारत युद्ध नहीं हुआ, वो हमारी बुद्धि एक है, वो बुद्धि से और मन से लड़ाई चल रही है, उसमें घोड़े इंद्रिय हैं और क्या क्या है ये सब करना है। किंतु अध्यात्म के लिए प्रदीप है ये श्रीमद् भागवत, यदि ये दीप न रहे तो अंधकार में वो चलते रहेंगे। इसलिए कहते हैं यहाँ पर ये अध्यात्म जो है, आजकल अध्यात्म के द्वारा शुद्ध भक्ति को आच्छादन कर देते हैं और उसी की बड़ी प्रशंसा करते हैं, वो वाह 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 करते हैं, वही सुनते हैं। भक्ति जो लीलात्मक जो ग्रंथ है, वो लीला को अध्यात्म बात के द्वारा छिपा करके उसका एक कष्ट कल्पना करके अर्थ करते हैं। भागवत में कष्ट कल्पना की कोई जरूरत नहीं, स्वाभाविक रूप में जैसा है वैसा ही वर्णन किया है, बस उसी को ही समझने की जरूरत है, उसको इतर व्याख्याओं के द्वारा आच्छादन करने की कोई भी जरूरत नहीं। अध्यात्मवादी क्या बामन महाराज इसकी बड़ी सुंदर व्याख्या करते हैं, अध्यात्मवादी बहुत सुंदर, और उसका समालोचना करते हैं बड़े ढंग से। बाहरी सभाओं में क्या वो वर्णन करेंगे, ये ब्रज का भाव या सब वर्णन कर किया जाएगा, ये सब इसलिए वो सब चीजों को वर्णन करते उसका खंडन करते हैं बड़ी शालीनता के साथ। तो यहाँ तो कहते हैं ये माया को हटा लेना ही उनका वस्त्र हरण है। अच्छा बात, ठीक, आप बड़े मान्य हैं, आपकी बातों को हमने मान लिया। अच्छा प्रभु, थोड़ी सी संदेह, माया को हटा लिया और उसके बाद में कृष्ण उनके कपड़ों को लौटा दिया और उसको उन्होंने पहन लिया और पहन में ब्रजे प्रवेश को ब्रज में प्रवेश किया, तो क्या हुआ, तो फिर माया उन्होंने लौटा लिया आराधना के बाद में, फिर वो पहन लिया अपना माया का कपड़ा और अपने घर में चली गई। बाहर अध्यात्म बात में ये सब कल्पना है, इसमें कोई भी सार की वस्तु नहीं है। अरे माया इत्यादि हटना तो उनका इस चतुर्युगी नहीं, 24वें चतुर्युगी नहीं हो चुका था, रामचंद्र जी के दर्शन मात्र से ही माया हट गई थी, माया का पर्दा हट गया था, अन्याभिलाषिता हट गई थी, योग कर्म आदि अनावृतम, ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, वो अनावृत हो चुका था, अनुकूल लेना क्रिसमस की निधन आरंभ हो चुका था, इसलिए इनको न माया हटाना है न कुछ। अरे गोपी गर्भ में इनका जन्म हो गया और नित्य सिद्धाओं का संग होने लग गया, वृंदा जी की कृपा हो गई और इनके यहाँ फिर माया आएगी, वो तो केवल एक भाव जिसके लिए कृष्ण ने ऐसा किया। भाई आम तोड़ लिया है या आम वृक्ष में लगे हुए हैं और आम भी पुष्ट हो गए हैं, अब पकने की देरी है, कुछ कुछ डरता हुआ भाव आने जा रहा है, पका हुआ नहीं है, यदि झटपट उसे तोड़ लो और उसे खाओ तो खट्टा लगेगा क्योंकि पका नहीं है। अरे भाई इसको पकने दो, इसको कहते हैं कसाय। आम भी है परिपूर्ण, उसका सब कुछ ठीक हो गया है, किंतु पका नहीं है। उसको ऐसे करने से रस नहीं निकलेगा और वो मधुर नहीं होगा। इसलिए कहते हैं अभी कसाय। क्या कसाय है? जब हम उस स्थिति में पहुंचेंगे, इधर आ जाएगी उसको समझना भी अभी बहुत दूर की बात। क्या कसाय कभी? इसलिए कृष्ण ताप दे रहे हैं पकाने के लिए, पेड़ की डाल पर पहुंच गए और पका रहे हैं। इनके प्रेम को पका रहे हैं। कच्चा अभी कड़वा लग जाएगा, खट्टा लगेगा, इसलिए पका रहे हैं। पूरी ताप समस्त चीज पर लगनी चाहिए। कृष्ण ने उनसे कई छोटोलियां की। और कसाय क्या, उसको पहले इन्होंने बतलाया। ये पहले जन्म में ही जो साधन हम लोग करते हैं, अभी हम लोगों का साधन, अभी साधन नहीं, अभी साधन का बाहरी सभी के लिए नहीं कह रहा, साधारण रूप में मैं बतला रहा। हो सकता है कि उनका साधन यथार्थ में साधन हो रहा था। जब वो उत्तमा भक्ति का साधन आरंभ होगा तब तो कुछ लक्षण आने लग जाएंगे, क्लेश भक्ति और शुभदा, इसके ऊपर में फिर और उठ जाएगा मुख्य लघुकृतुर्लभा। और उत्तमा भक्ति जब प्रकाशित होगी तो सांद्रानंद कृष्णा। इन शब्दों का अर्थ जो जानने वाला तो समझेंगे। विशेष आत्मा का शब्द का अर्थ ही समझना बड़ा भारी कठिन है। ये यहाँ की वस्तु नहीं है। विशेष आत्मा विशेष जो वहां के रागात्मिक जो भक्त हैं, उनके हृदय में नित्य सिद्ध भाव है। वहां से उनका अनुगमन करने पर कृपा करके वो जब उतरता है कुछ यहाँ, तब वो विशेष आत्मा होता है। इन लोगों के लिए कहा कृष्ण ने, तुम लोग सिद्धा हो। आया श्लोक में कहीं तुम लोग सिद्धा हो, तुम्हारे भाव सिद्ध हैं। सिद्धा किस लिए कहा? स्वरूप सिद्ध इत्यादि, स्वरूप सिद्ध हो गया है। यहां तक इनका प्रेम भी सिद्ध हो गया है, किंतु प्रेम होने पर भी अभी कुछ कच्चा सा है। जैसे परशुराम के साथ में रामचंद्र जी का संवाद होता है और प्रति संवाद के साथ में ही इनको कुछ क्रोध का भाव आता है और रामचंद्र जी हंसते हुए उनका वो जो भगवत भाव है वो ले रहे हैं और उनको साधारण ऋषि बनाते हुए चले चले जाते हैं। और अंत में उनका उनकी जो भगवत्ता थी, जो आवेश अवतार, वो आवेश सब ले लिया और वो साधारण ऋषि बन गए। किसी ने न देखा न समझा न कुछ, और ऐसे ही बात हो गई। ऐसे ही इनको जो गोपी शरीर ही मिल चुका है प्रकट शरीर में, प्रकट लीला में, और भाव ही है पति होने का। पूर्व जन्म में उन्होंने पति का भाव किया था। ये कसाय, कसाय क्या था? ये पति भाव ब्रज में ये संभव पर नहीं हो सकता है। ये कसाय था, ये इसको दूर करना था कृष्ण को। ये चक्रवर्ती पाद जी अथवा हमारे महाप्रभु जी नहीं होते तो इस भाव तक पहुंचना बड़ा भारी कठिन। यदि पति भाव रहता ठीक तो ये कहां पहुंच जाती? कृष्ण और राधा जी का भजन करने पर भी कहां जाते? द्वारका में जाते, गोलोक तक भी जाते, द्वारका में रुक्मिणी का भाव इत्यादि जाता। ये कसाय था। ये कसाय कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा? कृष्ण ही जानते हैं और दूसरा कोई नहीं जानता। इसलिए तत्यागी योग माया ने अघटन प्रगति की माया ने कृष्ण के साथ में उनका योग करा दिया। इसलिए योगिनी अधिकतरी है, योगियों में योगिनियों में भी अधिकतरी उन्होंने ये संपर्क कराया। बिना ये संपर्क कराए हम लोग भी भजन में नहीं चल सकते, तरह तरह के विघ्न और बाधाएं आएंगी। विघ्न बाधा कृष्ण की कृपा के अतिरिक्त और किसी प्रकार से होती है, चाहे वो गुरु रूप में आए, जयंत के रूप में आए या स्वयं आए, अथवा भगवान की करुणा के घन विग्रह के रूप में आए, उन्हीं की कृपा से। एक दिन और हमने बतलाया था, वैष्णव कृपा अनुगामिनी भगवत कृपा से ही ये भक्ति होती है, ऐसे नहीं होगी। कृष्ण भक्त अनुगामिनी भगवान की कृपा, भक्त कृपा अनुगामिनी कृष्ण की कृपा से ही ये भक्ति होती है। जहां भी हम देखेंगे ये समन्वय जरूर मिलेगा, न तो अकेले वैष्णव करेंगे न भगवान ही करेंगे, भगवान भक्तों के बिना नहीं है। इसलिए भगवान की विशेष कृपा है। इतना दिन तक, एक महीने तक सवेरे ये जगी, साधन भजन किया, क्या करती थी, तन्मय होकर के एक दूसरी को बुला लिया, चौरास्ते में खड़ी होकर के उसके घर में गई, चुपके से खटखटाया, किसी का उसमें नाम लिखा दिया, नाम उच्चारण करके गोत्र नाम और या कुछ किसी इंगित इत्यादि से सबको जगाया। जगाया सब, मिल गई चौरास्ते पर या कहीं एक स्थान पर।